आप सुनना शुरू कर चुके हैं देश विदेश की खबरों से भरा न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वीकार करें अनुराग अन्वेषी का नमस्कार। दोस्तों, मुंबई में कोरोना से पैदा हुई स्थितियां सामान्य होती दिख रही हैं। बृहन मुंबई नगर पालिका का इरादा है कि 27 जनवरी से स्कूल खोल दिए जाएं। इस बीच WHO ने कहा है कि कोरोना अब इंसानों की जिंदगी में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों की तरह बना रहेगा। इसका एकमात्र इलाज है वैक्सीनेशन। सुप्रीम कोर्ट के 32 में से 8 जज अब भी कोरोना संक्रमित हैं। बलात्कार और हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में फैसला सुनाने की हड़बड़ी पर चिंता जताई है। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली NCR में आतंकवादी हमले की आशंका जताई है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको पंजाब और UP विधानसभा चुनावों की हलचलों की भी जानकारी देंगे। फिलहाल आज की पहली खबर। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है। बृहन मुंबई नगर पालिका का अनुमान है कि अब यहां कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे। BMC कमिश्नर इकबाल चहल ने बताया कि मुंबई ने तीसरी लहर के कोरोना के अपने पीक को पार कर लिया है। अब कोरोना के नए मामलों में हर दिन कमी आ रही है। आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि होने के कोई आसार नहीं है, इसलिए हम 27 जनवरी से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं। चहल ने कहा है कि 10 जनवरी को तीसरी लहर अपने चरम पर थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है। चहल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अब कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी नहीं होगी और 26 जनवरी से रोजाना 1 से 2 हज़ार नए मामले ही सामने आएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने मंगलवार को कहा कि लोग यह न सोचें कि COVID-19 महामारी एक स्थानिक बीमारी होने की राह पर है और इसलिए इसका खतरा कम हो जाएगा। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन में कहा कि लोग पेंडेमिक बनाम एंडेमिक की बात कर रहे हैं, जबकि मलेरिया और एड्स जैसी स्थानिक बीमारियों ने हजारों लोगों की जान ले ली है। बता दें कि एंडेमिक का मतलब है कोई ऐसी बीमारी जो स्थायी रूप से आबादी में फैलती रहे। दाओस में वैक्सीन इक्विटी पर जुड़े कार्यक्रम में माइकल रियान ने कहा कि स्थानिक बीमारी का मतलब यह नहीं कि यह अच्छा है, इसका मतलब यह है कि यह अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के मामलों में कमी लाने के लिए हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की ज़रूरत है ताकि किसी व्यक्ति की मौत न हो। माइकल रियान ने कहा कि 2022 में कोरोना से होने वाली मौतों और अस्पताल में मरीजों की भर्ती से जुड़े मामले कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोरोना रोधी वैक्सीनेशन इस महामारी से निपटने में हमारी मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल यह वायरस खत्म नहीं होने वाला है, शायद यह वायरस कभी खत्म न हो। महामारी से जुड़े वायरस हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं माइकल रियान ने महामारी से जुड़े गंभीर मामलों में वैक्सीन के 3 से 4 डोज की संभावनाओं पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमित कुल जजों की संख्या 10 हो गई है। इसके चलते बुधवार को 3 बेंच नहीं बैठी। कोर्ट कर्मियों का पॉजिटिविटी रेट भी 30% हुआ। मंगलवार को भी कई जज छुट्टी पर रहे। 9 दिनों में कोरोना पीड़ित जजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 32 में से कुल 10 जज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2 जज अब स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8 जज अभी भी छुट्टी पर हैं। 9 जनवरी को संक्रमित जजों की संख्या 4 थी। सूत्रों के अनुसार 400 से अधिक कोर्ट कर्मी भी कोरोना संक्रमित हैं। बलात्कार और हत्या के एक मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा निर्धारित करने में निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन किया गया। उसे सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट की तरफ से मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा, खास तौर से मौत की सजा से जुड़े मामलों में व्यक्ति को सजा की मात्रा पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय और मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय के साथ मजाक है, क्योंकि अपील करने वाले को खुद का बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया। यह सही केस है जो हत्या और बलात्कार समेत कई मामलों में निचली अदालतों के जल्दबाजी में फैसला सुनाने की प्रवृत्ति को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट साल 2017 के एक मामले पर सुनवाई कर रहा था, जहां एक आरोपी की मौत की सजा को 30 साल की जेल में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और बी नागरत्ना के पीठ ने यह टिप्पणी की है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली NCR में आतंकवादी हमले की आशंका की खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मंगलवार को जारी पुलिस के एक आदेश के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी में 20 जनवरी से ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारों सहित उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 20 जनवरी से लागू होगा और 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अवैध खनन मामले पर मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी को भूपेंद्र के यहाँ से 6 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और यह भी तलाशा जा रहा है कि इनसे कौन कौन से लोग जुड़े हैं। जांच एजेंसी को करोड़ों की नकदी के अलावा करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि भगवंत मान पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं और वे लोकसभा सीट संगरूर से 2 बार सांसद रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान को अपने होम ग्राउंड संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। पार्टी जल्द ही इस बारे में ऐलान करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3रे, 4थे और 5वें चरण के लिए दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में 2 दिनों से मंथन चल रहा है। BJP से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इन 3 चरणों के लिए करीब 160 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये नाम रखे जाएंगे और वहां से मुहर लगते ही पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। इससे पहले पार्टी ने मंगलवार देर शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें बहेड़ी विधानसभा सीट से छत्रपाल गंगवार जबकि भोजीपुर सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक बहोरन लाल मौर्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नई खबरों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें अनुराग अन्वेषी को विदा। नमस्कार दोस्तों।